ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ETC ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। 6.5 ਮਿੰਟ ਚ ਇਹ ਜੋ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, 6.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ETC ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ETC ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਗਾਲਵਨ 186 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਜੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ 6.5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੀਬਨ 6.5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁਆ ਥਾ ਵੋ ਕਿਆ ਥਾ। ਯੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁਆ ਥਾ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਵੋ ਦਿਨ ਥਾ May 5, 2002। ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਥੇ। ਕਭੀ ਥੋੜਾ ਚਲ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਕਭੀ ਫਿਰ ਸੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਕਭੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਰਹਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮੇ ਉਠਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਯਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਜਰਾ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਆਪ ਟਨ ਲੋਗੇ ਤੋ ਵਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਹੁਆ ਥਾ, ਉਸਮੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਫਰਨੀਚਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਕੇ ਹੀਰੋ ਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੀ, ਔਰ 22 नवंबर 1963 में वो लड़ते लड़ते मारे गए थे. ही इज नोन एज हीरो ऑफ लद्दाख. मैं अंदर गया और केबिन में मैं लेटा हुआ था और लेते लेते मैं ये पाठ सुन रहा था और 8:30 बजे ये पाठ जब शुरू हुआ तो मुझे अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे थे. मैं बड़ी श्रद्धा से गया था उस वक्त जब गया था तब, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लो ने और सरदार केसर सिंह साहब जो है सूरत में, जो होटल इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही गुरु कृपा से, लेकिन वहां के उजना सूरत गुरुद्वारा के प्रधान भी है, उनसे भी मैंने काफी जानकारी मूल मंत्र के बारे में, सिखिज्म के बारे में और गुरुबानी के बारे में प्राप्त की थी. जैसे दुखते को तिनके का सहारा होता है, तो हमने बड़ी श्रद्धा से वहां पाठ सुना. आपको मालूम है कि 7:30 घंटे के बाद शायद वो सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होता है, और जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ हमें जो वाइब्रेशंस महसूस होते थे, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द वेव्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी वेव्स मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे थे. मैंने इसलिए मेरी धर्मपत्नी को कहा कि तुसी मेरे से गल नहीं करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं ये पाठ काफी एंजॉय कर रहा हूं. उसमें हिंदी उर्दू के अल्फाज भी होते हैं तो मैं उसके मतलब भी समझने लगा था. जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ आगे बढ़ा और भी मुझे एनर्जी वेव्स मिले, और ये जो दाहिना कान जो बंद था और डॉक्टरों ने ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स में कई अलग अलग लेबोरेटरीज के रिपोर्ट हैं लिख के दिया है कि आप जिंदगी में कभी भी ये कान से नहीं सुन सकोगे, क्योंकि कान के नर्व्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं कैंसर की वजह से, और हड्डी की जो रचना है वो भी खत्म हो गई है. जैसे वो पार्ट आगे बढ़ा हमने और भी एक करिश्मा महसूस किया. पता नहीं मेरी बेटी को क्या ख्याल आया, मैं चौकड़ी मार पर उस वक्त बैठ गया था, इसलिए बेटी सोच रही थी कि पापा देखने में अच्छे लगते हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, तो वो तो एक मेमोरी पिक्चर लेने जा रही थी, उसका इरादा और कोई था नहीं. हमें तो पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. और ये पाठ और आगे बढ़ते ही वहां से एक अचानक एक रोशनी हुई, एक ज्योत ऐसे ही प्रकट हो गई, और थोड़ी वाइब्रेट होने के बाद वो स्टेडी भी हो गई. फिर वो मेरे पास आने लगी, जिसके फोटोग्राफ हैं, नेगेटिव हैं, और मेरे शरीर में ये उंगली पर प्रवेश कर गई. यहां से उसके दो हिस्से हुए थे और आगे बढ़ते बढ़ते ये शरीर में ऊपर कुछ वेव्स ऑफ एनर्जी आर एंटरिंग माय बॉडी. ये बिल्कुल पर्सनल प्राइवेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, आपको भी अलग सा होगा, यही नहीं कि यही हो, लेकिन ये जब एनर्जी वेव आगे बढ़ते गए, ये कान जो था जो 5 साल से बंद था, डॉक्टर कहते थे आपने कभी नहीं सुन पाओगे, वो सुखमनी साहिब का पाठ सुनते सुनते ये कान खुल गया. आज भी ये कान खुला हुआ है और मैं कथा कीर्तन एंजॉय करता हूं. जैसे ये पाठ आगे बढ़ता गया, फिर और भी एक अजीब सी बात हमने महसूस की. जो ज्योत आगे बढ़ी थी, मेरी बेटी ने 5-6 फोटो निकाले, इसमें से एक फोटो में ये ज्योत आप देख सकते हैं. आगे ये सरदर्द मुझे रहता था, यहाँ जो कैंसर का ट्यूमर है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो कैंसर का नहीं है, सिर्फ ट्यूमर है. जैसे ये मोल होता है वो भी एक ट्यूमर है, जिसको अंग्रेजी में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, कैंसर का ट्यूमर हो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं. तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट कहते हैं कि मैं कैंसर से खत्म हो जाऊंगा, अखंड पाठ के बाद के रिपोर्ट कहते हैं कहीं शरीर में कैंसर है ही नहीं. ये मैंने दावा नहीं करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं क्लेम करना है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स अपने आप बोल रहे हैं. और आज तो मेरे जो डॉक्टर जो थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, चीफ कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने लिख कर दिया है, जो मैंने यहां पढ़कर ही उस दिन सुनाया था, कि जब मैं हिंदी में बता रहा हूं, डॉक्टर के सीसा कहते हैं कि वासु भारद्वाज को कैंसर हुआ, इसलिए हम अगस्त 2001 से उन्हें कीमोथेरापी दे रहे थे, 6 कीमोथेरेपी फेल हुई थी, यहाँ होल का निशान भी बना हुआ है, लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब से वापस आए हैं, हम तो यहाँ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तैयारी करते थे, लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब जाकर का अखंड पाठ अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने जहां जहां खोज चलाई, हमें कहीं भी कैंसर देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ड्रॉप कर दिया है। और वासु भारद्वाज एक तंदुरुस्त शख्स की तरह कोई भी तनावपूर्ण सिचुएशन में कोई भी काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आंखों के चश्मे थे वो भी कम हो गए। और आप देख रहे हैं मैं 64 साल का हूं, I am 64, लेकिन मेरी गड्डी रिवर्स में जा रही है एंड आई एम एजिंग यूथफुली। और ये गुरु कृपा ही है, कृपा करके आप इसको चमत्कार नहीं कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। और मेरे पर जो गुरु कृपा हुई है, इससे बढ़कर भी गुरु कृपा किसी पर भी हो सकती, आप पर भी हो सकती है। और अरदास सुनने के लिए तो गुरु बैठे ही हैं, जैसे कबीर ने भी कहीं कहा है कि आप दिल से अरदास करो तो आप सुन सकते हैं, अरदास गुरु तक पहुंच भी सकती है। कबीर कहते हैं, मस्जिद मुल्ला बांग पुकारे, क्या मेरा साहिब बहरा है, चींटी के पांव में नुकुर बाजे, वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो ये अरदास तो डॉक्टर भी आज करने लगे, जो मुझे ट्रीट कर रहे थे गुरुवाणी वो भी पढ़ने लगे हैं, मरीजों को ये भी सलाह देते हैं, पढ़ाई के मुताबिक आपके दवा देते हैं, लेकिन आप हरमिंदर साहब जाकर के वहां अखंड पाठ और अरदास करोगे तो आपको भी जो वासु भारद्वाज के साथ हुआ ऐसी इससे भी बढ़कर गुरु कृपा हो सकती है। यही एक छोटा करिश्मा आपको भले लगे, बात वैसे तो छोटी है, कहानी छोटी है, लेकिन इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वो बहुत ही बड़ी है। और ये ज्ञान मैंने मस्कीन जी के कैसेट्स वीडियो सीडी सुनकर पाया है, और आज भी जब भी उनकी आवाज सुनता हूँ आज घर में, मुझे ऐसा लगता है गुरु मेरे मन में बसे हुए हैं। और गुरुबाणी में ये वचन भी गुरु ने दिया है, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। मैं अरदास करूं कि मेरी तरह आपका मन भी एक ऐसा तीर्थ बने और आप भी गुरुबाणी की सेवा में रहो। वाहेगुरु जी का खालसा।